This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
आप सुन रहे हैं महाभारत के पात्र सर ऑडियो पिटारा पर मेरे यानी अनामय वर्मा के साथ।
राजा युधिष्ठिर के यश और पराक्रम को देखकर दुर्योधन मन ही मन कुढ़ा जा रहा था। राजसूय यज्ञ की सफलता और इंद्रप्रस्थ का वैभव देखकर ईर्ष्यालु दुर्योधन युधिष्ठिर के विरुद्ध फिर एक नया षड्यंत्र बुन रहा था। हस्तिनापुर लौटने के बाद मामा शकुनी ने दुर्योधन से कहा,
दुर्योधन, तुम व्यर्थ युधिष्ठिर की लक्ष्मी को देखकर संतप्त हो रहे हो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि द्रियुद्ध कीड़ा के द्वारा मैं उस लक्ष्मी का हरण कर लूंगा। किसी भी संशय में पड़े बिना, कोई भी युद्ध किए बिना, केवल पासे फेंक कर, बिना अपनी कोई भी क्षति किए मैं पांडवों को जीत लूंगा। तुम पांडु पुत्र युधिष्ठिर को द्रियुद्ध कीड़ा का आमंत्रण भेजो।
जब ये बात महाराज धृतराष्ट्र तक पहुंची तो पहले वे इस प्रस्ताव के लिए तैयार नहीं हुए, पर दुर्योधन ने उन्हें नाना प्रकार के छल से मना ही लिया और उनके द्वारा मंत्रियों के प्रधान काका विदुर को आज्ञा दिलवाई कि युधिष्ठिर को द्रियुद्ध कीड़ा के लिए आमंत्रित किया जाए। आज्ञा पाकर धर्मात्मा विदुर भी असमंजस में पड़ गए। महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा अनुसार युधिष्ठिर को द्रियुद्ध कीड़ा के लिए आमंत्रण देना है, ये बात धर्मात्मा विदुर को कचोटती रहती है। इस चिंता में जब वे अपने कक्ष में आते हैं तो तात श्री भीष्म को वहां उनकी प्रतीक्षा करते हुए पाते हैं। पितामह भीष्म विदुर से चिंता का कारण पूछते हैं। जब विदुर उन्हें सारी बातें बताते हैं तो भीष्म कहते हैं,
तुम युधिष्ठिर को यह आमंत्रण अस्वीकार करने को कहना।
पर विदुर जानते हैं कि महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा को न मानना आसान नहीं है। अब युधिष्ठिर तक आमंत्रण पहुंचे इससे पहले महाराज धृतराष्ट्र ने अपने कुछ विशेष सेवकों को आदेश दिया कि
शीघ्र ही द्रियुद्ध क्रीड़ा के लिए तोरण स्फटिक सभा का निर्माण किया जाए। ध्यान रहे, द्रियुद्ध क्रीड़ा सभा में स्वर्ण और वैदर्य जड़े हुए 1000 खंभे और 100 द्वार से कम ना हो। क्रीड़ा सभा की लंबाई और चौड़ाई 1-1 कोस की होनी चाहिए।
महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा पाकर हजारों शिल्पी शीघ्र ही सभा निर्माण के कार्य में जुट गए। देखते ही देखते उन्होंने विशाल तोरण स्फटिक सभा तैयार कर दी। सभा में सब तरह की वस्तुएं यथा स्थान में सजा दी। उसके बाद असंख्य रत्नों से सुशोभित सुंदर सभा को अद्भुत स्वर्ण आसनों से सुसज्जित कर दिया गया। युधिष्ठिर निष्काम धर्मात्मा थे, वे किसी भी प्रकार के व्यसन से सदा मुक्त थे, किंतु बुलाए जाने पर न जाना राजवंश के नियम की अवहेलना होती। इसीलिए ज्येष्ठ पिताश्री महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा और उस पर काका विदुर का स्वयं आमंत्रित करने आना युधिष्ठिर कैसे मना कर सकते थे। सो उन्होंने उस व्यसन में लिप्त होना स्वीकार कर लिया और द्रियुद्ध क्रीड़ा का आमंत्रण शिरोधार्य किया। धर्म और अधर्म से जुड़े प्रश्नों पर युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी से कई बार कहा था कि मैं धर्म का पालन इसलिए नहीं करता कि मुझे उसका फल मिले, ये शास्त्रों की आज्ञा है, इसीलिए ऐसा आचरण करता हूं। फल के लिए धर्माचरण करने वाले तो व्यापारी हैं, धार्मिक नहीं। पांडु पुत्र युधिष्ठिर के चरित्र से हमें विनयशील, दयालु और करुणामय होने की सीख मिलती है। धर्म की रक्षा केवल सत्य और नीतिपूर्ण मार्ग पर चलकर ही की जा सकती है। यश अपयश को ईश्वर पर छोड़कर कर्तव्य पालन को प्रधानता देना ही सनातन धर्मी का धर्म है। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और धर्मात्मा विदुर इस द्रुत क्रीड़ा का परिणाम जानते थे, पर दुर्योधन के हठ के आगे सब विवश थे। वे सब चुप्पी साधे द्रुत क्रीड़ा में सम्मिलित हो जाते हैं। द्रुत क्रीड़ा के लिए बनाई गई स्फटिक सभा में भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और विदुर आकर अपना अपना स्थान ग्रहण करते हैं। दुर्योधन, दुशासन और शकुनी भी आते हैं। राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ आकर भीष्म पितामह, कुलगुरु, आचार्य और काका श्री विदुर का आशीर्वाद लेकर अपना स्थान ग्रहण करते हैं। उसके बाद महाराज धृतराष्ट्र आकर अपना स्थान ग्रहण करते हैं और द्रुत क्रीड़ा को आरंभ करने की आज्ञा देते हैं। खेल आरंभ होने से पहले नियम बनाए जाते हैं। दुर्योधन सबसे कहता है कि
दाव तो मैं ही खेलूंगा, पर पासे मामा श्री शकुनी फेंकेंगे।
अब इस बात पर वहां तर्क वितर्क होने लगता है तो दुर्योधन क्रोधित हो जाता है और खेल से उठ जाता है। युधिष्ठिर स्वभाववश उसे शांत करते हुए उसके नियमों को मान लेते हैं। युधिष्ठिर खेल आरंभ करते हुए अपनी अनमोल माला दांव पर लगाते हैं। दुर्योधन भी दांव लगाता है। मामा श्री शकुनी पहला पासा फेंकते हैं और जीत जाते हैं। मामा श्री ऐसे ही पासे पर पासे फेंकते जाते हैं और दुर्योधन को जीत पर जीत मिलती जाती है। दाव पर दाव हारते हारते ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि युधिष्ठिर 1,18,000 स्वर्ण मुद्राएं, अक्षय धन भंडार, अपना विशेष रथ, अपनी 1,00,000 दासियां और उनके स्वर्ण अलंकार, सोने के ओहदे वाले 1,000 हाथी और अंत में अपना सारा धन, भूमि, प्रजा और प्रजा का धन भी दाव पर लगा देते हैं और ये सब उनके हाथ से निकल जाता है। इंद्रप्रस्थ को जीतकर दुर्योधन, शकुनी और दुशासन बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर युधिष्ठिर अपने भाई नकुल को दाव पर लगाते हैं, फिर सहदेव को, फिर अर्जुन को, फिर भीम को, और इस तरह युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों को हार जाते हैं। ऐसे में भीष्म को दुर्योधन पर क्रोध आ जाता है, पर वो विवश होकर अपने क्रोध को अंदर ही अंदर दबा लेते हैं। फिर धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं को भी दाव पर लगा देते हैं और हार जाते हैं। अंततः युधिष्ठिर अपनी हार स्वीकार करते हुए कहते हैं, द्रुत क्रीड़ा को यहीं समाप्त किया जाए, क्योंकि अब मेरे पास दांव पर लगाने को कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन दुर्योधन अब भी नहीं मानता, उसे तो अपने अपमान का प्रतिशोध लेना था। दुर्योधन तब युधिष्ठिर से द्रौपदी को दांव पर लगाने को कहता है। यह सुनते ही विदुर तुरंत खड़े हो जाते हैं। विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं, दुर्योधन ने भरी सभा में हस्तिनापुर की कुल वधु का अपमान किया है, आपको ऐसे पुत्र को इसी क्षण त्याग देना चाहिए। ये सुनकर दुर्योधन आग बबूला हो जाता है और वो काका विदुर का बहुत अपमान करता है, पर धृतराष्ट्र उसे कुछ भी नहीं कहते। युधिष्ठिर को विवश होकर द्रौपदी को दांव पर लगाना पड़ता है। युधिष्ठिर द्रौपदी को भी हार जाते हैं। उसके बाद दुर्योधन द्वारपाल को भेजकर राजमहल में विश्राम कर रही द्रौपदी को सभा में लाने का आदेश देता है। रानी द्रौपदी ऐसे किसी असभ्य आदेश का पालन क्यों करती? वो द्वारपाल को मना कर देती है। द्वारपाल वापस आकर दुर्योधन से कहता है कि
महारानी ने सभा में आने से मना कर दिया है।
ये सुनते ही क्रोधित दुर्योधन द्वारपाल के गाल पर जोर से थप्पड़ जड़ देता है और कहता है,
दासी को महारानी कहता है मूर्ख, दासी द्रौपदी को जो भी कहना है सभा में आकर कहना होगा, जा जाकर कह दे।
ऐसे में कृपाचार्य अगली अप्रिय घटना को भांप कर उठ खड़े होते हैं।
ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट और ऑडियो स्टोरीज के लिए सुनते रहिए ऑडियो पिटारा।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।